नमस्कार भारत, तारीख 1 सितंबर, दिन शुक्रवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। अमेरिका ने रूस से कहा कि वो सैन फ्रांसिस्को स्थित अपना वाणिज्य दूतावास और अन्य 2 मिशन बंद करे। मथुरा में आज से आरएसएस की बैठक। बैठक से पहले उत्तर प्रदेश को मिला नया बीजेपी अध्यक्ष। इसरो का नवीनतम नेविगेशन उपग्रह प्रक्षेपण असफल रहा।
नासा के फेलियर हुए हैं, रशिया में फेलियर हुए हैं, 40वीं लॉन्च जो है जो फेल हुई है, मेरे हिसाब से इसको कोई बहुत बुरी नजर से देखने की जरूरत नहीं है।
नोटबंदी की सफलता को लेकर सरकार के दावों पर लगातार उठ रहे हैं सवाल।
इनिशियली उन्होंने सोचा था वो हुआ नहीं है, और इसलिए सरकार अब अपना गोल पोस्ट बदल रही है और वो कह रही है कि इससे डिजिटाइजेशन होगा, इससे टैक्स बेस बढ़ेगा।
कार्यक्रम में खबरें और भी होंगी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। अमरीकी सरकार का कहना है कि उन्होंने रूस से सैन फ्रांसिस्को स्थित अपना वाणिज्य दूतावास और 2 अन्य मिशन बंद करने के आदेश दिए हैं। बीते महीने रूस ने अपने देश में मौजूद अमरीकी राजनयिकों की संख्या कम कर दी थी, जिसके जवाब में अमरीकी गृह मंत्रालय ने यह कदम उठाया है। हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्लाह ने कहा है कि उन्होंने दमिश्क में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद से मुलाकात की थी और दोनों के बीच लेबनान से सटी सीरियाई सीमा पर मौजूद कथित इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों को वहां से सुरक्षित निकालने देने पर बात हुई थी। 3 साल पहले इस्लामिक स्टेट ने लेबनान से सैनिकों को बंदी बना लिया था, जिनके बारे में जानकारी पाने के लिए नसरल्लाह ने यह समझौता किया था। बाद में समझौते के तहत सीरियाई सरकार ने इस्लामिक स्टेट के सैकड़ों लड़ाकों और उनके परिवारों को सीरिया से होते हुए जाने दिया था। टेलीविजन पर प्रसारित एक संदेश में हसन नसरल्लाह ने अपने समर्थकों से कहा, मैं दमिश्क गया था और मैंने राष्ट्रपति बशर अल असद से मुलाकात की। मैंने उन्हें बताया कि लेबनान सुरक्षा बल के हमारे सूत्रों ने जांच की है और उन्हें कुछ नहीं मिला। सेना के खुफिया सूत्रों ने भी जांच की है और कुछ नहीं पाया। अगर ये लड़ाई लेबनान से सैनिकों के भविष्य के बारे में चिंता किए बगैर खत्म हो गई, तो देश में एक बड़ी राजनीतिक और मानवता से जुड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ये थे हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्लाह के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के एक आला अधिकारी ने कहा है कि कथित इस्लामिक स्टेट को सीरिया में उसका गढ़ माने जाने वाले रक्का से बाहर धकेलने का मूल्य वहां के नागरिकों को चुकाना पड़ रहा है। रक्का में कुर्द और अरब सैनिकों का गठबंधन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ युद्ध की अगुवाई कर रहा है और उन्हें अमरीका के नेतृत्व में गठबंधन सेना के बमवर्षक विमानों का समर्थन मिल रहा है। मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र के कमिश्नर की प्रवक्ता रवीना शमदासानी का कहना है,
What we are concerned about is that the battle to regain Raqqa is being waged.
जिस बात की हमें चिंता है वो ये है कि रक्का में चल रही लड़ाई, जिसका खामियाजा वहाँ के नागरिकों को चुकाना पड़ रहा है। मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र के कमीशन की चिंता है कि शायद गठबंधन सेना लड़ाई के उद्देश्यों को भूल गई है। अगर आपकी लड़ाई से नागरिकों के जानों माल का नुकसान होता है और सुविधाएं नष्ट होती हैं, तो लड़ाई का मुद्दा ही क्या है? हमारा उद्देश्य इस्लामिक स्टेट के चुंगल से आम नागरिकों को बचाना होना चाहिए, ना कि जीत हासिल करने के लिए उन्हें खत्म कर देना। मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र की कमिश्नर की प्रवक्ता रवीना शमदासानी के शब्द। अमरीकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने कहा है कि उन्होंने और अमरीकी सैनिक अफगानिस्तान भेजने संबंधी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि आदेश पर कुछ दिनों के भीतर ही अमल हो जाएगा। सैनिकों की संख्या के बारे में अभी उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है। मैटिस का कहना है कि ये सैनिक अफगानिस्तान में फिर से सिर उठा रहे तालिबान से लड़ने में अफगानी सैनिकों की मदद करेंगे। बुधवार को पेंटागन ने माना था कि अफगानिस्तान में पहले ही 11,000 अमरीकी सैनिक मौजूद हैं, जो कि पहले बताए गए 8,400 के आंकड़े से अधिक हैं। अमरीका के टेक्सास में आए तूफान हार्वी के बाद वहां राहत और बचाव कार्य जोर शोर से चल रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गृह मामले के सुरक्षा सलाहकार का कहना है कि तूफान से लगभग 1,00,000 घर प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए व्हाइट हाउस कांग्रेस से अधिक आर्थिक मदद की गुजारिश करेगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी निजी दौलत से $10,00,000 राहत कार्य में मदद के लिए दान दिए हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। दिनेश वर्मा हमें गुड मॉर्निंग कह रहे हैं और इस समय तमाम जो हमारे श्रोता हमसे जुड़ गए हैं वो हमें नमस्कार कर रहे हैं। संदीप हैं, संदीप कुमार विश्नोई भी ये कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग बीबीसी, मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। अमरीका और रूस के बीच तनातनी शांत होने का नाम नहीं ले रही। कभी अमरीका रूसी राजनयिकों को देश से बाहर जाने को कहता है तो कभी बदले में रूस अमरीकी राजनयिकों को। अब अमरीकी सरकार का कहना है कि उन्होंने रूस को सैन फ्रांसिस्को स्थित अपना वाणिज्य दूतावास और अन्य दो मिशन बंद करने के आदेश दिए हैं। सरकार के मुताबिक रूस को अपनी अनुचित कार्रवाई के जवाब में शनिवार तक न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में मौजूद वाणिज्य दूतावास और एनएक्सी बंद करने के लिए कहा गया है। ये पूरा प्रकरण क्या है, मामला क्या है, बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनते हैं मानसी दास से।
रूस और अमेरिका के बीच इस विवाद के तार बीते साल तक जाते हैं। बीते साल दिसंबर में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राष्ट्रपति चुनावों में कथित हस्तक्षेप के आरोप में रूस पर प्रतिबंध लगा दिए थे और 35 रूसी राजनयिकों को देश से बाहर जाने को कहा था। साथ ही उन्होंने अमेरिका में मौजूद रूस के दो राजनयिक परिसरों को भी बंद कर दिया था। जवाब में इस साल जुलाई में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये कहते हुए 755 अमरीकी राजनयिकों को रूस छोड़ने को कहा था कि वो जल्द दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार नहीं देख रहे हैं। इन राजनयिकों को 1 सितंबर यानी आज अपने देश वापस लौटना है और इससे ठीक पहले अमरीका ने रूस को सैन फ्रांसिस्को स्थित उनका वाणिज्य दूतावास और दो वाणिज्य मिशन बंद करने को कहा है। अमरीकी गृह मंत्रालय के अनुसार ये कार्रवाई रूस के साथ बराबरी के स्तर पर की गई है और अमरीका के इस कदम के बाद अब दोनों देशों में एक दूसरे के 3-3 दूतावास होंगे। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता सारा हकाबी सैंडर्स ने कहा,
We've taken a firm and measured action in response to Russia's unfortunate decision earlier this year.
इस साल के शुरू में रूस ने जो दुर्भाग्यपूर्ण फैसले लिए उनके जवाब में हमने सोच समझ कर और एक कड़ा फैसला लिया है। हम रिश्तों में आ रहे तनाव को कम करना चाहते हैं और रूस के साथ बेहतर संबंधों की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके लिए हम अवसरों की तलाश करेंगे लेकिन हम फैसला लेने में बराबरी भी चाहते हैं। ये थी व्हाइट हाउस की प्रवक्ता सारा हकाबी सैंडर्स। एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि दूतावास और वाणिज्य मिशन को बंद कर दिया जाएगा लेकिन किसी रूसी कर्मचारी को फिलहाल देश छोड़कर जाने के लिए नहीं कहा गया है। अधिकारी का कहना है कि रूस इन संपत्तियों का रखरखाव कर सकता है लेकिन वो इनका इस्तेमाल नहीं कर सकता। इधर रूसी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि रूस अमरीका के इस आदेश को अभी देखेगा और उसके बाद ही कोई फैसला लेगा।
तो जैसा कि आपने मानसी से सुना, अमेरिका ने रूस से कहा कि वो सैन फ्रांसिस्को स्थित अपना वाणिज्य दूतावास बंद करे।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 6155, 7995, 9915 और 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक आज से मथुरा में शुरू हो रही है। बैठक में संघ और उससे जुड़े संगठनों के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के अलावा पार्टी के कुछ और नेता भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। बैठक से ठीक एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में नए अध्यक्ष की नियुक्ति की है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव से पहले हो रही ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और भी बहुत कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, सुनिए लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
पिछले महीने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जब लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर थे उसी दौरान विपक्षी दलों के विधान परिषद सदस्यों के इस्तीफे आने शुरू हो गए। ये इस्तीफे तब तक आते रहे जब तक बीजेपी के 5 मंत्रियों के सदन पहुंचने का रास्ता साफ नहीं हो गया, यानी सपा और बसपा के कुल 5 सदस्यों ने विधान परिषद की अपनी सदस्यता छोड़ दी। ये सभी नेता बीजेपी में शामिल हो गए और विधान परिषद में इनकी खाली की गई जगह पर बुधवार को बीजेपी ने अपने मंत्रियों को चुनाव लड़ाने की घोषणा कर दी। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास 2/3 से भी ज्यादा बहुमत है लेकिन मुख्यमंत्री समेत अपने 5 अहम मंत्रियों को विधानसभा की बजाय विधान परिषद के रास्ते सदन में पहुंचाने के फैसले पर विपक्ष ने हैरानी जताई है। कांग्रेस पार्टी का तो सीधे तौर पर कहना है कि बीजेपी को विधानसभा उपचुनाव हारने का डर था इसलिए ऐसा किया गया। पार्टी प्रवक्ता द्विजेंद्र त्रिपाठी कहते हैं,
बीजेपी ने एक सर्वे कराया जिस सर्वे में ये बात स्पष्ट हुई कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने जो वायदे किए उसमें एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ तो सब मिलाकर के हालात इतने बुरे और इन लोगों का गुस्सा इतने चरम पर था कि इन लोगों ने मुनासिब नहीं समझा कि हम चुनाव लड़े, क्योंकि जनता के गुस्से का सामना करना आसान नहीं था। अगर उनकी लोकप्रियता इतनी भी थी तो कम से कम मुख्यमंत्री को तो विधानसभा का चुनाव लड़कर के ही आना चाहिए था।
भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के साथ ही उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य को विधान परिषद के उपचुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया है। इनके साथ ही परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा भी विधान परिषद के उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार होंगे। ये पांचों अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं है और बतौर मंत्री इनका 6 महीने का कार्यकाल 19 सितम्बर को समाप्त हो रहा था। 4 सीटों पर विधान परिषद उपचुनाव 15 सितंबर को और 1 सीट पर 18 सितंबर को होगा और माना जा रहा है कि इन पांचों उम्मीदवारों की जीत तय है। मुख्यमंत्री समेत अहम मंत्रियों को विधान परिषद के रास्ते विधायक बनाने की भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ये वजह बताते हैं।
विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अभी कमजोर है संख्या के लिहाज से, और चूंकि संवैधानिक प्रावधान है इस नाते हमको जाने में कोई आपत्ति नहीं है। जिस देश में 10 वर्षों तक डॉक्टर मनमोहन सिंह उच्च सदन से प्रधानमंत्री रहते हो, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में दो दो मुख्यमंत्री चाहे मायावती हो या अखिलेश यादव हो वो विधान परिषद के सदस्य के नाते जाते हैं, तो बड़ा आश्चर्य है कि योगी आदित्यनाथ जी के विधान परिषद जाने पर आपत्ति क्यों है।
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अभी लोकसभा के सदस्य हैं और दोनों ने अभी तक लोकसभा की सदस्यता नहीं छोड़ी है। जानकारों का भी कहना है कि विधानसभा के उपचुनाव में पार्टी को जोखिम उठाना पड़ सकता था, इसलिए विधान परिषद का रास्ता चुना गया। बहरहाल पार्टी ने मंत्रियों की जीत का सुरक्षित रास्ता भले ही तय कर दिया है, लेकिन जानकारों का कहना है कि लोकसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव का सामना करना पार्टी के लिए कम चुनौतीपूर्ण नहीं होगा। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
लगातार सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो को कल एक झटका लगा। इसरो के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से नवीनतम नेविगेशन उपग्रह का किया गया प्रक्षेपण असफल रहा। इसरो के प्रमुख किरण कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसकी जानकारी दी। आखिरकार क्या वजह रही इस असफलता के और क्या इससे भारतीय अंतरिक्ष मिशन को भारी नुकसान पहुंचेगा? इन सवालों के जवाब दे रहे हैं विज्ञान मामलों के जानकार पल्लव बागला और उनसे बात की मोहम्मद शाहिद ने।
पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया था और वो फेलियर हुआ है। ये रॉकेट का फेलियर है, सैटेलाइट का फेलियर नहीं है। ये 19 मिनट की उड़ान थी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की। इसके 3rd मिनट में एक गड़बड़ी शुरू हुई। एक हीट शील्ड होती है रॉकेट पे, वो सेपरेट नहीं हुई। ये हीट शील्ड क्या होती है? जब रॉकेट एटमॉस्फेयर के थ्रू जा रहा होता है, उसके अंदर जो पैसेंजर है सैटेलाइट, उसको एटमॉस्फेयर के गर्मी से फ्रिक्शन से बचाने के लिए मोटी परत की एक मेटल प्लेट होती है, वो लगी होती है सैटेलाइट के ऊपर। 3 और 4 मिनट के बीच में जब रॉकेट एटमॉस्फेयर को पार कर लेता है और वैक्यूम में पहुंच जाता है, तब ये हीट शील्ड हटनी चाहिए। आज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में ये हीट शील्ड जो थी ये नहीं हटी और अंत तक 19 मिनट के बाद भी जब सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट में पहुंच गया तब भी वो हीट शील्ड उसके ऊपर लगी रही। तो ये सैटेलाइट जो है वो हीट शील्ड के साथ अब स्पेस डेब्री बन जाएगा और अंतरिक्ष में घूमता रहेगा।
तो इस नुकसान को किस तरीके से आंकते हैं जरा?
देखिए, स्पेयरिंग जो है वो बहुत रिस्की बिजनेस होती है। नासा के फेलियर हुए हैं, रशिया में फेलियर हुए हैं। इसरो का जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उसकी ये 41वीं फ्लाइट थी PSLV के। तो ये 41वीं लॉन्च जो है जो फेल हुई है, मेरे हिसाब से इसको कोई बहुत बुरी नजर से देखने की जरूरत नहीं है। इसरो इसकी जांच करेगा क्या गड़बड़ हुई, उसकी करेक्शन होगा और इसरो आगे बढ़ जाएगा। जब भी कभी फेलियर हुआ है तब इसरो अपना काम करके आगे जरूर बढ़ा है। तो ये फेलियर जो है, हाँ, सेटबैक जरूर हुआ है, क्योंकि PSLV को भारत का वर्क हॉर्स रॉकेट बोलते हैं, जो कि एक के बाद एक बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना रहा था और लॉन्च में लगा हुआ था। तो थोड़ा सेटबैक तो होगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसरो को PSLV को वापस मार्केट में उतारने में, लेकिन कहीं ना कहीं वो इसको करेक्ट करके आगे जरूर बढ़ा लेगी। देखिए, इसरो में एक बड़ा ट्रेडिशन रहा है कि जब भी कोई सक्सेस होता है तो उसका मिशन अनाउंसमेंट और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें इसरो के चेयरमैन ने ही तुरंत अनाउंस किया कि ये फेलियर हुआ है मिशन। 1-2 मिनट के अंदर ही उन्होंने अनाउंस कर दिया, कोई कवर अप नहीं हुआ, और फेलियर का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो इसरो के चेयरमैन डॉक्टर किरण कुमार ने खुद एड्रेस किया। वो जूनियर करता है अनाउंस और फेलियर जो है उसका अनाउंसमेंट सीनियर करता है और अकाउंटेबिलिटी जो है वो सीनियर देता है, तो वो भी आज मेरा तो ये कहीं ना कहीं इसरो का अपना एक बहुत पुराना गहरा ट्रेडिशन है, तो सीनियर उसके लिए अकाउंटेबल होता है और वही आज देखने को मिला।
इसरो को लगा झटका, नए प्रक्षेपण असफल रहा। जानकारी दे रहे थे विज्ञान मामलों के जानकार पल्लव बागला। भारत के बाद अब पाकिस्तान। कल वहां की विशेष अदालत ने 2007 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नेता बेनजीर भुट्टो हत्याकांड में 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सजा सुनाई जबकि 5 अभियुक्तों को बरी कर दिया। अदालती फैसले में पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को भगोड़ा घोषित किया। सवाल ये है कि परवेज मुशर्रफ भगोड़े तो घोषित हो गए हैं लेकिन आगे मुशर्रफ का भविष्य क्या होगा? 2016 में इलाज के लिए देश छोड़कर गए मुशर्रफ क्या वापस आएंगे? इन सारे सवालों के जवाब बीबीसी उर्दू संवाददाता हारून रशीद से पूछे हमारे सहयोगी मोहम्मद शाहिद ने।
मुशर्रफ का पाकिस्तान वापस आना इस अदालती फैसले के बाद और मुश्किल हो गया है, लेकिन ये पहला अदालती फैसला नहीं है जिसमें उनको इश्तिहारी या वांटेड करार दिया गया है। इससे पहले 1-2 मुकदमे और भी हैं जिनमें वो मतलूब हैं और उनसे कहा गया है कि वो अदालत में पेश हों लेकिन नहीं आए हैं। एक लाल मस्जिद का इस्लामाबाद में केस था जिसमें उनके खिलाफ वारंट हैं और एक जो आईन तोड़ा और पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया तो उसका एक केस है, उसमें भी वो वांटेड हैं। लेकिन ये बेनजीर का काफ़ी संगीन केस था और बहुत अहम केस था, तो इसमें भी अब उनके खिलाफ ये जो उनको इश्तिहारी करार दिया गया है और उनकी जायदाद जब्त करने का आदेश दिया गया है, तो इससे उनकी मुश्किलात कानूनी पाकिस्तान में और बढ़ गई हैं और मेरा नहीं ख्याल कि फोर्सिएबल फ्यूचर में अगर हालात इसी तरह रहते हैं, कोई बड़ी तब्दीली उसमें नहीं आती, तो वो पाकिस्तान वापस आ सकेंगे और यहाँ से अपनी जो सियासत और जो अपनी उन्होंने दल बनाई हुई है वो वहाँ यहाँ से चला सकेंगे। लगता यही है कि उन्हें दुबई में ही या विदेश में ही रहकर अपनी सियासत और जो कुछ वो मीडिया में रहने का जैसे करते हैं इंटरव्यूज हर दूसरे रोज किसी चैनल को दिया हुआ होता है, तो उसी तरह अपने आप को शायद वो सियासी तौर पर जिंदा रख सकें, लेकिन पाकिस्तान उनका वापस आना इस वक्त बहुत मुश्किल है।
इसको वहाँ की आर्मी किस तरीके से लेंगी क्योंकि वो एक रिटायर्ड जनरल रह चुके हैं पाकिस्तान के, तो इस वक्त कैसा ले रही है वहाँ की सेना?
जी, पाकिस्तान की सेना की ही वजह है जो कहा जाता है और बल्कि खुद जनरल मुशर्रफ ने भी ये बात मानी है कि वो अगर पाकिस्तान से निकल पाए हैं तो वो उस वक्त के जो जनरल राहील शरीफ थे उनकी कृपा से वहाँ से निकल पाए हैं। उनके खिलाफ जो मुकदमात पाकिस्तान में चल रहे थे उसमें काफ़ी उनको मुश्किलात थी और काफ़ी मुश्किल जगह में वो फंसे हुए थे, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने चूंकि वो उनके नेता रह चुके हैं और पाकिस्तानी फौज पर शायद बदनामी आती, तो उस वजह से 1-2 मरतबा जब वो अदालत पेश होने के लिए जा रहे थे तो कमर में तकलीफ का बहाना करके वो आर्मी की ही अस्पताल में चले गए और फिर वहाँ काफ़ी अरसा रहे और अदालती जो कार्रवाई है उससे दूर रहते रहे, तो मुल्क से बाहर ले जाने में भी फौज का हाथ था। तो अभी तो लगता नहीं है कि फौज इस पोजीशन में होगी क्योंकि जो मुशर्रफ की शबी या यहाँ पर इस वक्त उनका जो बना हुआ स्टेटस उसमें उनको वापस लाना कोई ज्यादा अकलमंदी की बात मुझे नहीं नजर आती कि फौज ये करने को तैयार होगी।
सरकार क्या कोशिश करेगी उनको वापस लाने की बाहर से?
देखें, सरकार तो जो मुस्लिम लीग नून की है वो पहले दिन से कह रही है कि मुशर्रफ को आकर जो भी उनके खिलाफ कानूनी मुकदमात हैं उनका सामना करना चाहिए, तो इस एतबार से तो वो उनको लाना चाह रहे हैं और वो आके चाहती है कि अदालत के सामने पेश हों। लेकिन इसके अलावा अगर वो सिर्फ यहाँ सियासत के लिए आना चाह रहे हैं या अपनी दल को ज्यादा मुतहर्रिक करने के लिए आ रहे हैं तो उसकी वो इजाज़त नहीं देगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस सूरत हाल में उनका वापस आना कोई आसान काम होगा। और आज जो रिएक्शन भी आया है पीपल्स पार्टी की तरफ से, बेनजीर भुट्टो की पार्टी की तरफ से, वो भी यही कह रहे हैं कि जो असल मुजरिम हैं वो आज़ाद घूम फिर रहे हैं, तो शायद उनका भी इशारा जनरल मुशर्रफ की तरफ है जो उस वक्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे जब बेनजीर भुट्टो को मारा गया था।
परवेज मुशर्रफ का भविष्य क्या होगा, बीबीसी उर्दू संवाददाता हारून रशीद इसका विश्लेषण कर रहे थे। कार्यक्रम में अब वक्त है कि हम अखबार के पन्ने पलटें, लेकिन अखबार के पन्ने पलटने से पहले बता दें कि अशोक कुमार हैं जो कि हमें गुड मॉर्निंग कह रहे हैं बीबीसी के फेसबुक पन्ने पर। परमेश्वर लाल हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा प्रोग्राम है, नाइसली मॉर्निंग प्रोग्राम, और सारे प्रतिनिधि को के लिए वो नमस्कार कर रहे हैं। क्या लिख रहे हैं आज के अखबार मानसी?
आज के अखबारों में जो सुर्खियां हैं वो बेसिकली जो कल कैबिनेट रिशफल होने वाला है, कैबिनेट फेरबदल होने वाला है, माफ़ कीजिएगा कल बोल रही हूँ, कल या परसों की तारीख ज़्यादातर अखबार दे रहे हैं, और उसके बाद विकास दर में जो गिरावट आई है उसी पर सब अखबारों के पहले पन्नों पर खबर है। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है कि केंद्र सरकार कैबिनेट में जल्द विस्तार कर सकती है और इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। अखबार के अनुसार सरकार के कम से कम आधा दर्जन मंत्रियों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देने वालों राजीव प्रताप रूडी, महेंद्रनाथ पांडे, संजीव बालियान का नाम शामिल है। अखबारों ने सूत्रों के हवाले से यह कहा है कि कलराज मिश्रा और उमा भारती समेत तीन मंत्री जल्द इस्तीफा दे सकते हैं, और हिंदुस्तान टाइम्स कहता है कि कैबिनेट में फेरबदल की घोषणा 2 सितंबर को की जा सकती है। दैनिक जागरण कहता है 3 सितंबर को यह घोषणा हो सकती है। जनसत्ता के पहले पन्ने पर जो खबर छपी है उसके अनुसार देश के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल जून 2017 में घटकर 5.7% पर आ गई है। ये 3 साल में इसका सबसे निचला स्तर है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार अर्थव्यवस्था में कैश की कमी यानी नोटबंदी का असर और जीएसटी के लागू होने के कारण सकल घरेलू उत्पाद की दर 6% से भी कम हो गई है और ये बाजार की उम्मीदों से कम है। जनसत्ता में छपी एक और खबर के अनुसार बलात्कार के आरोप में जेल में बंद डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पद्म पुरस्कार देने के लिए रिकॉर्ड तोड़ सिफारिश आई थी।
बाबा के लिए लगा सिफारिशों का अंबार, पद्म सम्मान जनसत्ता की।
जी कुल सिफारिश आए थे वो थे 18,700 के आसपास, जिनमें से 4,200 लोगों ने बाबा गुरमीत राम रहीम के नाम का प्रस्ताव दिया था। एक खबर है इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने से, गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने प्रस्ताव दिया है कि गाय की तस्करी के कारण होने वाली हिंसा को रोकने के लिए जंगल की जमीन पर गायों के लिए अभयारण्य बनाए जाएं और इस सिलसिले में वो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन से मिलने वाले हैं। दी स्टेट्समैन में छपी एक खबर के अनुसार आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की तारीख अब बढ़ा दी गई है और इसे 31 दिसंबर कर दिया गया है। इससे पहले आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 सितंबर थी।
एक कार्टून पढ़ना चाहता हूं, जनसत्ता का कार्टून है कि छुट्टा जानवरों के लिए हर जिले में खुलेंगी गौशालाएं, योगी सरकार का आदेश, और गायें आपस में बात कर रही, नहीं भाई हम ऐसे ही ठीक हैं, गोरखपुर नहीं थम गोरखपुर
हाँ जी गोरखपुर में बच्चों की जो मौत हुई है उसके बाद ये कार्टून आया है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया मानसी। और अब हम आपको एक नोटबंदी पर एक रिपोर्ट सुनाने वाले हैं कि आरबीआई की सालाना रिपोर्ट में नोटबंदी को लेकर आंकड़े सामने आने के बाद केंद्र की मोदी सरकार पर विपक्ष लगातार हमले कर रहा है। नोटबंदी की सफलता को लेकर सरकार के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। नोटबंदी मोदी सरकार का इकलौता ऐसा कदम नहीं था जिसे कि जोर शोर से उठाया गया हो। सर्जिकल स्ट्राइक के दावे से लेकर स्वच्छ भारत अभियान जैसी योजनाओं को बड़े स्तर पर प्रचारित किया गया। आज इन योजनाओं की क्या स्थिति है, सुनिए बीबीसी संवाददाता आदर्श राठौर की रिपोर्ट।
नोटबंदी की सफलता को लेकर सरकार के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। सिर्फ नोटबंदी नहीं और भी कई कदमों और योजनाओं का मोदी सरकार ने जोर शोर से प्रचार किया था और कई दावे भी किए थे। वे दावे जमीन पर कहां खड़े होते हैं? जेएनयू में अर्थशास्त्र के पूर्व प्रोफेसर अरुण कुमार का कहना है कि सरकार ने शुरू में 3 बड़े लक्ष्य निर्धारित करके नोटबंदी का ऐलान किया था।
काले धन पे अंकुश लगेगा, जो नकली नोट हैं वो निकल आएंगे, जिससे ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रहा है। तो अब तो 99% तो नोट वापस आ गए हैं आरबीआई के मुताबिक, तो न काले धन की अर्थव्यवस्था पे असर पड़ा है, न नकली नोटों की संख्या उतनी थी जितना सोचा गया था, और न ही ये लग रहा है कि जो नक्सलवाद है वो खत्म हो गया या टेररिस्ट खत्म हुए। तो मेरा मानना है कि अब सरकार को ये एडमिट करना पड़ेगा कि जो इनिशियली उन्होंने सोचा था, शुरू में सोचा था, वो हुआ नहीं है, और इसलिए सरकार अब अपना गोल पोस्ट बदल रही है और वो कह रही है कि इससे डिजिटाइजेशन होगा, इससे टैक्स बेस बढ़ेगा।
इसी तरह से सर्जिकल स्ट्राइक का दावा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इससे सीमा पार से घुसपैठ और आतंकवाद में कमी आएगी। क्या ये दावे हकीकत में तब्दील हो पाए हैं? इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार सुशांत सिंह का कहना था कि ऐसा होता दिख नहीं रहा।
सरकार के जो दावे थे सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में वो तो पूरे साबित नहीं हुए हैं। पाकिस्तान की तरफ से चाहे वो आतंकवादी गतिविधियां हों, रुकाव नहीं हुआ है। सरकार का शायद पूरी तरह से भी ये दावा नहीं था कि ये सब रुक जाएगा, पर उनको उम्मीद थी थोड़ी सी कि शायद इससे कुछ फर्क पड़ेगा और ऐसी कमी होगी। पर देखिए, समझने वाली बात ये भी है, पाकिस्तान ने ये माना भी नहीं कि ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, तो जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं तो उसका असर पाकिस्तान पर कैसे पड़े।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्राओं को लेकर चर्चित रहे। कूटनीति के स्तर पर भारत की वैश्विक स्थिति क्या है और उसका पड़ोसियों के साथ रिश्तों पर क्या असर हुआ है, इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार मनोज जोशी बताते हैं।
चीन के साथ तो रिश्ते कमजोर हो गए हैं, पाकिस्तान के साथ भी कुछ खास नहीं है, हमारे पड़ोस में नेपाल है, वहाँ भी जटिल समस्याएं सामने आई हैं। तो अब हमारी जो कूटनीति है, अब मोदी जी की पॉलिसी अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि सब कुछ जो है वो अमेरिका के सामने रखा गया है और पूरे अमेरिका का जो समर्थन है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और जो हमारी वैश्विक नीति है वो अमेरिका के समर्थन से आगे बढ़ाई जा रही है। एक जो इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक विजन होना चाहिए वो सामने साफ नजर नहीं आ रहा है कि मोदी जी का क्या मतलब, अपना स्ट्रेटेजिक पॉलिसी, अपनी स्ट्रेटेजिक विजन क्या है।
स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं का भी जोरदार आगाज हुआ था। वरिष्ठ पत्रकार सुषमा रामचंद्रन बताती हैं कि इसमें कुछ हद तक ही सफलता मिली है
स्वच्छ भारत का। इसमें मैं समझती हूँ कि एक तो बहुत बड़ी चीज हुई है कि इसमें अवेयरनेस हो गया। आगे अगर आप कहें कि ये हमारे देश में बहुत सारे शहरों में स्वच्छता आ गई है, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जरूर ये है कि अवेयरनेस आ गई है, लोग इसके बारे में बात करते हैं। हालांकि ये आंकड़े ये दिखाते हैं कि बहुत ज्यादा ये शौचालय बने हैं और इनमें से काफी सारे इस्तेमाल नहीं हुए। स्किल इंडिया को लें, बहुत ज्यादा इसका कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ लगता है। बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन अगर आप जाएं किसी स्किल इंडिया के जो उन्होंने फ्रेंचाइजी कंपनीज को लिया है कि वो स्किल इंडिया वर्कशॉप्स करें, तो वो बहुत डेवलप्ड नहीं है, बहुत अच्छे से इनकी ट्रेनिंग नहीं है।
वरिष्ठ पत्रकार सुषमा रामचंद्रन का कहना है कि मेक इन इंडिया की कामयाबी कारोबार करने की सहूलियत पर निर्भर करती है, मगर भारत इस मामले में कई देशों से बहुत पीछे है। आदर्श राठौर, बीबीसी दिल्ली।
और यहीं पर आपको बता दें कि इस शनिवार यानी कि कल बीबीसी इंडिया बोल में चर्चा का विषय यही होगा कि मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले से आखिरकार हासिल क्या हुआ। 99% रकम तो वापस चलन में आ गई, बदले में जनता पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। जनता महीनों तक लाइनों में खड़ी रही। नोटबंदी के फैसले के समय मोदी सरकार ने जो दावे और वादे किए थे, उसका नतीजा कितना सफल कितना विफल। मुफ्त फोन कीजिए 1811-7000 पर कल शाम 7:30 बजे बीबीसी इंडिया बोल में। और अब कार्यक्रम में बात करेंगे खेल समाचारों की। अब से थोड़ी देर पहले यूएस ओपन के विमेंस डबल में भारत की सानिया मिर्जा अपने जोड़ीदार शुई पेंग के साथ दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। सानिया और पेंग की जोड़ी ने मार्टिक वेकिक की क्रोशियाई जोड़ी को 55 मिनट तक चले मुकाबले में 6-4, 6-1 से हराया। वैसे अभी से थोड़ी देर पहले यूएस ओपन के महिला वर्ग का सबसे लंबा मैच खेला गया। 3 घंटे 33 मिनट तक चले मुकाबले में अमेरिका के शेल बॉय रोजर्स ने ऑस्ट्रेलिया के डारियो गवरलोवा को 7-6, 4-6, 7-6 से हराया। वहीं पुरुष वर्ग में रोजर फेडरर को लगातार दूसरे मैच में 5 सेट तक संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने दूसरे दौर में रूस के मिखाइल यूजनी को 6-1, 6-7, 4-6, 6-4 और 6-2 से हराया। बात क्रिकेट की करना जरूरी है। भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेले गए चौथे वनडे में भारत ने 168 रनों से बड़ी जीत दर्ज की है। भारत द्वारा दिए गए 376 रनों के विशाल स्कोर का पीछा करते हुए श्रीलंका की पूरी टीम 207 रनों पर ढेर हो गई। भारत की ओर से विराट कोहली और रोहित शर्मा ने शानदार शतक जड़े। भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 375 रन बनाए थे। श्रीलंका की ओर से सबसे ज्यादा रन एंजेलो मैथ्यूज ने बनाए। और अब कार्यक्रम में इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। अमरीकी सरकार का कहना है कि उन्होंने रूस से सैन फ्रांसिस्को स्थित अपना वाणिज्य दूतावास और 2 अन्य मिशन बंद करने के आदेश दिए हैं। हिजबुल प्रमुख हसन नसरल्ला ने कहा है कि उन्होंने दमिश्क में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद से मुलाकात की थी और दोनों के बीच लेबनन से सटी सीरियाई सीमा पर मौजूद कथित इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों को वहां से सुरक्षित निकलने देने पर बात हुई थी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संस्था के एक आला अधिकारी का कहना है कि कथित इस्लामिक स्टेट को सीरिया में उसका गढ़ माने जाने वाले रक्का से बाहर धकेलने का मूल्य वहां के नागरिकों को चुकाना पड़ रहा है। अमरीकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने कहा है कि उन्होंने और अमरीकी सैनिक अफगानिस्तान भेजने संबंधी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे शाकिर आलम। शाम को 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक मोहनलाल शर्मा को विदा दें, लेकिन bbchindi.com पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। और उन तमाम श्रोताओं का शुक्रिया जो कि फेसबुक पर हमसे जुड़े रहे, आपसे भी विदा। नमस्कार।